आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय धातु और अधातु। ये कक्षा आठवीं के विषय विज्ञान का दूसरा अध्याय है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है धातुओं और अधातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में। और पिछली क्लास में हमने बात करनी शुरू की थी रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, और सबसे पहले हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि आपने अपने आसपास बहुत से धातु की बनी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि सोने चांदी के आभूषण देखे होंगे, या फिर आपने किसी धातु के बने बर्तन वगैरह देखे होंगे। तो आपने ये देखा होगा कि जब कुछ ज़्यादा समय तक रखा जाता है इन धातु की चीज़ों को, तो उनका कलर थोड़ा सा हल्का पड़ने लग जाता है, फीका पड़ने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी चांदी के आभूषण देखेंगे तो आपको ये पता है कि ज़्यादा समय तक उसको रखने से, या फिर उसका ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने से, उसको पहनने से, उपयोग करने से, उस पर एक काली काली सी लेयर चढ़ जाती है। उसका रंग जो होता है वो फेड होने लगता है, वो फीका पड़ने लग जाता है। और साथ ही में अगर पीतल के या तांबे के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जाए और रोज़ रोज़ प्रयोग होने की वजह से उस पर भी क्या होता है, उस पर भी रंग फीका पड़ना आपको नज़र आने लगता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रंग फीका पड़ने लग जाता है, या फिर जो काली लेयर चढ़ जाती है जो चांदी की चीज़ें होती हैं उस पर, या फिर जो तांबे या फिर और किसी मटेरियल के बने, जो धातु के बने बर्तन होते हैं, उनका कलर जो हटने लग जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उन धातुओं के ऊपर रासायनिक क्रिया होने लग जाती है। वातावरण में मौजूद बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो उन धातु के बने पदार्थों के साथ में रिएक्शन करने लगते हैं, रासायनिक क्रिया करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ बदलाव आने लग जाता है। जो धातु के बर्तन वगैरह होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनमें बदलाव आने लग जाता है क्योंकि उन पर रासायनिक अभिक्रिया होने लग जाती है वातावरण में मौजूद अलग अलग जो चीज़ें होती हैं मौजूद उनके वजह से। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि जो वायु में मौजूद ऑक्सीजन होता है वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है धातु की बनी चीज़ों के साथ में। तो मैंने आपको ये बताया था कि धातु की बनी चीज़ों के साथ में जब भी कभी ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है, तो वहाँ पर वो बनाता है उस धातु का ऑक्साइड। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ हो, सिर्फ यहाँ पर धातु की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ हो अगर वो रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ में, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पादन होगा, वो वहाँ पर उसी चीज़ का, जिस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की, उस चीज़ की ऑक्साइड बन जाती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि अलग अलग जो ऑक्साइड बने हैं अलग अलग पदार्थों के, उनका नेचर अलग अलग होता है, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। और वो प्रकृति मैंने आपको समझाई थी गतिविधि 12 के जरिए, जो पेज नंबर 21 में है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस गतिविधि में आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैग्नीशियम का रिबन ले सकते हैं पतला सा, ये आप लोगों को आपके लैब में मिल जाएगा। और जब आपने ये रिएक्शन करवाया होगा, ये गतिविधि 12 करवाई होगी, तो आपने ये देखा होगा कि मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने लिया था, उसको आपने जब जलाया था इस गतिविधि में, जलाने के बाद जब आपने देखा था कि जब उस मैग्नीशियम के रिबन को जला दिया गया था, तो उसमें रोशनी निकलने लग गई थी क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो रही थी, और जलने के बाद रोशनी प्रोड्यूस करते हुए, उत्पन्न करते हुए, उसने मैग्नीशियम की रिबन ने एक सफ़ेद रंग की राख तैयार की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने जो राख वहाँ पर इकट्ठा की है मैग्नीशियम के रिबन के जलने के वजह से, उसको आपको क्या करना था, उसको आपको एक परख नली में डाल देना था, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना था, और उस टेस्ट ट्यूब में उस राख को डालने के बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना था, पानी ऐड कर देना था, और अच्छे से मिश्रण को तैयार कर लेना था, मिक्स कर लेना था अच्छे से हिला करके। उसको मिक्स करने के बाद में जब आपने जो मिश्रण तैयार किया था उसको विलयन कहते हैं, तो जो आपने विलयन तैयार किया था, आपने फिर चेक किया था कि ये जो विलयन तैयार हुआ था उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्या वो एसिड है, मतलब कि क्या वो अम्ल है, या फिर क्या वो क्षार है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया था, आपने लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया था। जब आपने उसमें लिटमस पेपर डाला था रेड कलर का, तो आपने ये देखा था कि जो रेड लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज हो गया था, वो नीले रंग का हो गया था। तो ये बात जो होती है जब लिटमस जो रेड कलर का है, जब वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है किसी विलयन में डालने से, तो वो ये दर्शाता है कि जो विलयन है, जो विलयन आपने टेस्ट किया है, वो क्षार है, प्रकृति में क्षारीय है। तो इस गतिविधि के माध्यम से, गतिविधि 12 के माध्यम से आपको ये पता चल गया था कि जब मैग्नीशियम का रिबन जला था, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो वहाँ पर उसका ऑक्साइड बनता है। बगैर ऑक्साइड बने कोई चीज़ जल नहीं सकती। अगर कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पर आपको श्योर होना चाहिए, आपको हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए कि वहाँ पर ऑक्साइड बन ही रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम जल रहा था, मैग्नीशियम का रिबन, तो वहाँ पर ऑक्साइड बन रहा था। और इस गतिविधि के माध्यम से, गतिविधि 12 के माध्यम से आपने चेक किया था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन आपने तैयार किया था पानी में मिक्स करके, जो सॉल्यूशन आपने बनाया था, जब आपने उसकी प्रकृति चेक की थी तो आपको पता चला था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला था विलयन में, उसकी प्रकृति क्षारीय है। और केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही नहीं, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पर उनका ऑक्साइड बनता है, उस धातु का ऑक्साइड बनता है। और जब भी कभी कोई धातु का ऑक्साइड बनता है तो वो प्रकृति में क्षारीय ही होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। पेज नंबर 22 पर सबसे ऊपर टॉप पर आपको रिएक्शन दिखाई गई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर केवल मैग्नीशियम के बारे में बात की गई है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी रूप से बात की जाए तो जितने भी धातु होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर वो उस धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और उस धातु का ऑक्साइड जो बनकर तैयार होता है वो प्रकृति में क्षारीय होता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो तांबा और एल्युमिनियम होते हैं, जब वो वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो भी अपने अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कि तांबा अपना ऑक्साइड बनाता है जिसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, और एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बनाता है जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। और इनके ऑक्साइड के बनने के वजह से ही आप लोग देखते हैं कि जो तांबे के बर्तन होते हैं या फिर एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद इनके जो कलर चेंज होने लग जाता है, जो ये मलिन दिखाई देने लग जाते हैं, वो इसीलिए दिखाई देने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन धातुओं के ऑक्साइड बन चुके होते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की थी कि जो धातु के पदार्थ होते हैं वो जल के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो धातु होते हैं वो जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर वो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो सोडियम मेटल होता है, सोडियम धातु होती है, जब वो जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करती है। यहाँ पर ये गतिविधि की थी आपने, गतिविधि 13 पेज नंबर 22 पर। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, लगभग बाजरे के साइज़ के बराबर आपने लिया था, बाजरे का जो दाना होता है उसके साइज़ के बराबर ही आपने सोडियम धातु का टुकड़ा लिया था, और उसको आपने जब फिल्टर पेपर पे रखकर अच्छे से सुखा लिया था, उसके बाद आपने उस टुकड़े को एक बीकर में भरे पानी में डाल दिया था। और जैसे ही आपने बीकर में भरे पानी में सोडियम के टुकड़े को डाला था तो आपने ये देखा था कि बहुत ही तेज़ी से सोडियम घूमने लगा था और उसके साथ में वो वहाँ पर अभिक्रिया करने लगा था, और अभिक्रिया होने की वजह से वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होने लगा था, बनने लगा था, और हाइड्रोजन की गैस निकलने लगी थी। ये गतिविधि करते वक्त मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो सोडियम का धातु होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी के वजह से जो सोडियम का धातु होता है उसको केरोसिन ऑयल, मतलब कि जो मिट्टी का तेल होता है, उसमें डुबा करके रखा जाता है। क्योंकि अगर सोडियम का धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है तो तुरंत वहाँ पर आग लग जाती है बहुत तेज़ी से, और वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन की गैस बन जाती है। इसीलिए जब भी कभी सोडियम की मेटल को रखा जाता है, सोडियम की धातु को रखा जाता है, तो उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबाकर ही रखा जाता है ताकि वो वायु के कॉन्टैक्ट में ना आए, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, और उसमें कोई जलने की एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो धातु की चीज़ें होती हैं, धातु के पदार्थ होते हैं, वो अम्ल के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी धातु की बनी चीज़ें होती हैं, जब वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको बताया था कि या तो आप अभिक्रिया करवा कर भी देख सकते हैं अपने लैब में, अपने टीचर की मौजूदगी में कोई भी आप धातु ले सकते हैं, आपके मेटल कोई भी मिल जाए उसमें आप चेक कर सकते हैं छोटा सा टुकड़ा, और उसमें एसिड या फिर कोई सा भी एसिड आपके लैब में जो पड़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप उस धातु पर डालेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न होने लगती है, और किसी भी धातु के ऊपर जब कोई भी एसिड डाली जाती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न होने लगती है। तो इतनी बात हम लोगों ने की थी धातुओं के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अधातु जो होते हैं वो वायु के साथ में किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अधातु जो होते हैं वो वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पर वो उस अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये अधातु का ऑक्साइड बनता है ये प्रकृति में अम्लीय होता है। इसको चेक करने के लिए आपने गतिविधि 14 की थी जो कि पेज नंबर 23 पर है। मैंने आपको बताया था कि इस गतिविधि में आपको एक चूर्ण लेना था सल्फर का पाउडर लेना था, और उस सल्फर के पाउडर को ले करके आपको उद्दहन चम्मच में डाल देना था। उद्दहन चम्मच थोड़ी डिफरेंट टाइप की चम्मच होती है, अलग प्रकार की चम्मच होती है। इसकी जो हैंडल होती है बहुत लंबी होती है, और जो इसका चम्मच वाला हिस्सा होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है हैंडल से। जो हैंडल वाला हिस्सा होता है उसके 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो चम्मच वाला हिस्सा होती है वो, और इस प्रकार की चम्मच को उद्दहन चम्मच कहते हैं। इसमें आपको डाल देना था जो सल्फर का चूर्ण आपने लिया है उसको। अगर आपके पास चम्मच नहीं मौजूद था तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग ये बना भी सकते हैं। कोई भी जो धातु का ढक्कन होता है, बोतल का ढक्कन, अगर वो धातु का बना हुआ है तो वो आप लोग ले सकते हैं और उसमें छेद करके या फिर किसी मेटल की तार से बगैर छेद किए भी उसके चारों ओर लपेट करके एक लंबी हैंडल जैसा बना करके आप इस प्रकार का जो बना देंगे चम्मच वो उद्दहन चम्मच के जैसा दिखने में ही होगा। तो आप लोग उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें आप जब सल्फर का पाउडर डाल देंगे तो उसके बाद आपने क्या किया था, आपने उसको बर्न किया था, आपने उसको हीट किया था। कुछ देर तक हीट करने की वजह से जो सल्फर आपने लिया था उद्दहन चम्मच में वो जलना शुरू हो गई थी और उसमें से गैस पैदा होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उसमें से गैस पैदा होनी शुरू हो गई थी तुरंत आपको क्या करना था, आपको उस गैस को एक गिलास के बर्तन में दबा देना था और उस गैस को वहां से निकलने नहीं देना था। गैस को गिलास के बर्तन में डालते ही ढक्कन बंद कर देना था और वहां पर आपको उस गैस को उस गिलास के बर्तन में ही इकट्ठा करना था। उसके बाद बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको उस चम्मच को वहां से निकाल देना था और गैस को ग्लास के अंदर ही रखना था। चम्मच को निकालने के बाद आपको उस ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देना था, और उस गैस को पानी के साथ में मिक्स करने के बाद एक बढ़िया सा विलयन आपको तैयार करना था, एक सल्यूशन तैयार करना था। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया था उसके बाद आपने चेक किया था, एक लिटमस पेपर आपने लिया था, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपने लिया था और उसको चेक किया था आपने उस विलयन में डाल करके, तो आपने ये पाया था कि नीले रंग का लिटमस रेड कलर का हो गया था, जो ये दर्शाता है कि जो विलयन आपने तैयार किया है वो अम्लीय है, प्रकृति में एसिडिक है। और इस अभिक्रिया को करके आपको ये समझ में आ गया था कि जितनी भी अधातु की बनी चीज़ें होती हैं जैसे कि सल्फर का चूर्ण, जब ये वायु के साथ में अभिक्रिया करता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ये जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो ये सल्फर का डाइऑक्साइड बनाता है, क्योंकि यहाँ पर दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इसीलिए सल्फर का डाइऑक्साइड यहाँ पर बना है। और जैसे ही सल्फर का डाइऑक्साइड बना है अगर उसका विलयन तैयार किया जाए पानी में घोल करके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फर का डाइऑक्साइड तैयार हुआ है वो अम्लीय है प्रकृति में। और इसी प्रकार से जितने भी अलग अलग अधातु की चीज़ें होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो उस अधातु का ऑक्साइड बनाती हैं और वो प्रकृति में अम्लीय होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अधातु की बनी चीज़ें जल के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जितनी भी अधातु की बनी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तो अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्यतः ये अधातु की बनी चीज़ें जल या फिर जो वाटर वेपर होते हैं, भाप जो होता है, इसके साथ ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। और इसी वजह से फॉस्फोरस को जल में ही संग्रहित किया जाता है, जल में ही उसको रखा जा सकता है। उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है कि जो अधातु की बनी चीजें होती हैं वो अम्ल के साथ में, एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करती हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जितनी भी ज्यादातर अधातु की बनी चीजें होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में, मतलब कि तनु अम्लों के साथ में वो अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब कि आपके लैब में आपने देखा होगा दो प्रकार के एसिड होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है मतलब कि तनु अम्ल होता है, और दूसरा जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। तो जो डाइल्यूट वाला है, जो तनु अम्ल है, उसके साथ रिएक्शन ज़्यादा शो नहीं करती हैं अधातु की बनी चीज़ें, लेकिन वो कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं उनके साथ में ये रिएक्शन शो करती हैं। कंसनट्रेटेड जो अम्ल होते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें जो एसिड है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अगर किसी के शरीर पर गिर जाए तो वो तुरंत वहाँ पर जलन पैदा कर सकता है, स्किन बर्न हो सकती है। और इस प्रकार का जो एसिड होता है इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, तनु अम्ल जो होते हैं, वो ज़्यादातर रिएक्शन शो नहीं करते उतना ज़्यादा अधातु की बनी चीज़ों के साथ में, लेकिन जो सल्फर है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर का डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाता है और जल को भी बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सल्फर है वो एक अधातु है, और वो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ में, मतलब कि जो ज़्यादा क्रियाशील एसिड होता है उसके साथ में वो रिएक्शन करता है। और यहाँ पर जो एसिड लिया गया है वो लिया गया है नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसके साथ में अभिक्रिया करवाई गई है सल्फर की, तो वहाँ पर बनता है सल्फर का डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया धातुओं के और अधातुओं के बारे में, अलग अलग जो अभिक्रिया होती है उनके गुणधर्मों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में धातु और अधातु की बनी चीज़ों का किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा कि धातुओं का आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हो अपने रोज़ की ज़िंदगी में। तो वो भी आपने भी देखा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि धातुओं का आप लोग उपयोग करते हो भोजन के बर्तनों को बनाने के लिए। भोजन पकाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर आजकल धातु के ही बने होते हैं। बहुत पुराने ज़माने में मिट्टी के बने बर्तन बनाए जाते थे और उसमें खाना बनाया जाता था, लेकिन आजकल जो होता है मेटल, मतलब कि धातु, बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है, बहुत सस्ती हो चुकी है, और इसी वजह से आजकल जो बर्तन बनाए जाते हैं वो धातुओं के ही बनाए जाते हैं। क्योंकि ये जो धातु के बर्तन होते हैं, धातु की कोई भी जो चीज़ होती है वो ऊष्मा की बहुत ज़्यादा सुचालक होती है, और इसी वजह से खाना पकाने के लिए धातुओं के ही बर्तन बनाए जाते हैं। दूसरा उपयोग यहाँ पर बताया गया है कि बिजली के उपकरण बनाने के लिए, रेडियो में इस्तेमाल किया जाता है धातुओं का, विद्युत वाहक तार बनाने के लिए, फ्रिज बनाने के लिए, इन सभी के लिए धातुओं का ही उपयोग किया जाता है, और मुख्यतः मतलब कि मेनली तांबे के तारों का ही उपयोग किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि धातु की बनी जो चीज़ें होती हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं, और जो तांबा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए हमारे घरों में जो तार आते हैं बिजली के उनमें तांबा ही उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला है कि घरों में वर्षा और धूप से बचाने के लिए आपके घरों में, घर के छत पर एल्युमिनियम या फिर लोहे की चद्दरों का उपयोग किया जाता है, ताकि जो चद्दर जब छत पर बिछा दी जाती है तो आपके घर में जो वर्षा का पानी है वो आपके घर में एंटर ना करे, आपके घर में ना पहुंचे, और धूप से भी आपको ये धातु की बनी चीज़ें बचाती हैं, और एक प्रकार से ये छत का काम करती हैं आपके घरों के ऊपर। उसके बाद अगला उपयोग है कि सोना, चांदी और टिन का उपयोग किया जाता है आभूषण और सिक्के बनाने के लिए, मतलब कि जो सोना चांदी है उसका इस्तेमाल किया जाता है आभूषण बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, और जो टिन है उसका इस्तेमाल किया जाता है या तो बर्तन वगैरह बनाने के लिए या फिर सिक्के बनाने के लिए। उसके बाद अगला है कि जो पारा होता है, पारा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पारा होता है इकलौता ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, जो हमारे कमरे का तापमान होता है उसके ऊपर जो पारा होता है ये लिक्विड रूप में पाया जाता है, मतलब कि ये द्रव्य फॉर्म में पाया जाता है। बाकी के सारे जो धातु होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो ठोस होते हैं, और पारा जो होता है इसका एक विशेष उपयोग भी किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो थर्मामीटर होता है, जो तापमान चेक करके देता है, जब किसी को बुखार हो गया हो तो उसका तापमान चेक किया जाता है, और वो जो तापमान चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है चीज़, उसका नाम होता है थर्मोमीटर, और उस थर्मोमीटर के अंदर में पारा होता है, मरकरी होती है और उसी के इस्तेमाल से पता चल पाता है कि किसी भी व्यक्ति का तापमान कितना है। उसके बाद अगला इस्तेमाल है कि जो सोडियम धातु होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन सोडियम धातु से बहुत सी चीज़ें जो हमारे प्रकृति में पाई जाती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं। जैसे कि जो आपके घरों में सामान्य नमक इस्तेमाल होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और जो आप लोग धावन सोडा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि डिटर्जेंट जो आप लोग यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए, उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट। और आप लोगों ने खाने के सोडे के बारे में भी सुना होगा, जो खाने का सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी प्रकार से अलग अलग धातुओं का हम लोग अपने रोज़ की ज़िंदगी में कई सारे रूपों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर अधातुओं के उपयोग के बारे में। तो जो गंधक होता है, सल्फर जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है अम्ल, औषधि और बारूद बनाने के लिए। जो बम वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, गंधक का ही इस्तेमाल किया जाता है और उसी के इस्तेमाल से बारूद वगैरह बनाया जाता है। रेड फॉस्फरस जो होता है, लाल फॉस्फरस नाम का एक अधातु होता है और इसका उपयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने के लिए। आपके घरों में जो माचिस आती है उसको बनाने के लिए लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है और जंतुनाशकों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। जो आप लोगों के घर में सेल होते हैं, बैटरी वगैरह जो होती हैं, जो टॉर्च वगैरह में लगाई जाती हैं, उसमें ग्रेफाइट होता है, एक रॉड होती है जिसकी मदद से आपका जो सेल होता है वो काम करता है, और जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। उसके बाद अगला यूज़ है अधातुओं का कि जो अपने पेंसिल आप लोग यूज़ करते हैं उसमें सीसा अगर ना लगाया जाए तो उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जा सकता है। तो जो पेंसिल होते हैं या तो उसमें लेड लगाया जाता है, लेड मतलब कि सीसा, या तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट जो होता है वो होता है अधातु। तो यहाँ पर आपको अधातुओं के अलग अलग उपयोगों के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उत्कृष्ट धातु के बारे में कि उत्कृष्ट धातु क्या कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग अगर उसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहें तो हम ये देखते हैं कि उनका रंग मेंटेन रहता है, उतना ज़्यादा जल्दी फीका नहीं पड़ता जितना ज़्यादा जल्दी लोहे की बनी चीज़ों का रंग फीका पड़ जाता है। जो सोने या चांदी के आभूषण होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग वैसे ही इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, मतलब कि ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में या फिर पानी के साथ में, और ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, और ये वायु, जल, अम्ल, क्षार इन सभी पर बहुत ही कम रिएक्शन करके शो करते हैं। और ऐसे कोई भी धातु जो वायु, जल, अम्ल और क्षार इनमें से किसी के साथ में भी ज़्यादा रिएक्शन ना शो करें, ज़्यादा अभिक्रिया ना दिखाएं, तो हम उस प्रकार के जो धातु होते हैं उनको उत्कृष्ट धातु कहते हैं। और जो सोना और चांदी होता है ये दोनों के दोनों भी उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, ना जल के साथ रिएक्शन करते हैं ज़्यादा, ना ये वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। थोड़ा बहुत रिएक्शन इनका होता है जब इन पर बहुत कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा क्रियाशील अगर इन पर एसिड या फिर क्षार डाला जाएगा तो इन पर थोड़ा सा रिएक्शन होता है, लेकिन अगर पूरे रूप से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो जो सोना या चांदी का मेटल होता है, धातु होता है, ये बहुत ही कम क्रियाशील होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि जो सोने का धातु होता है उसकी शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में, मतलब कि कितना कैरेट है कोई सोना उससे पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा शुद्ध है। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट से कम जितने भी सोने होते हैं वो सारे के सारे मिलावटी सोने होते हैं, जैसे कि जो 22 कैरेट का या 23 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें कुछ प्रतिशत किसी और धातु का मिलाया जाता है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर पढ़ना है मिश्र धातु के बारे में। तो आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि कई सारे आभूषण होते हैं और कई सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें जंग नहीं लगती। तो इनमें जंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि जब इन आभूषणों को या बर्तनों को बनाया जाता है तो उस टाइम पर उस धातु के साथ में या तो कोई दूसरा धातु मिक्स कर दिया जाता है या फिर कोई दूसरा अधातु मिक्स कर दिया जाता है, मतलब कि जब भी कभी कोई बर्तन या फिर आभूषण बनाया जाता है और उसमें जंग नहीं लगती तो इसका मतलब ये है कि उस धातु के अंदर में या तो दूसरा धातु मिक्स किया गया है या फिर कुछ उसमें अधातु मिक्स किया गया है। और इस प्रकार के जो धातु होते हैं जिसमें या तो कोई दूसरा धातु मिक्स किया गया हो या फिर कोई दूसरा अधातु मिक्स किया गया हो, इस प्रकार के धातु जो होते हैं इन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। और मिश्र धातु के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, मतलब कि आपके घरों में जो पानी का नल होता है जिसका कलर बिल्कुल चमकदार होता है, उस पर जंग कभी नहीं लगती, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है। किस किस के मिश्रण से बनी है ये लोहे के मिश्रण से बनी है, क्रोमियम या फिर निकल के साथ में। जब लोहे में क्रोमियम और निकल मिला दिया जाता है तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील बनती है। और इस प्रकार का जो धातु होता है इस पर जंग नहीं लगती, इसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। उसके बाद अगला उदाहरण है पीतल का। जो पीतल होता है वो जस्ते में, मतलब कि तांबे में जस्ता मिलाने के बाद पीतल का धातु बनता है। और इसी प्रकार ही अलग अलग प्रकार के धातुओं में या तो धातु या फिर अधातु को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद में कुछ अलग गुणों वाले धातुओं को बनाया जाता है जिनको मिश्र धातु कहते हैं। और इनके उदाहरण है कांसा जो होता है, पीतल जो होता है, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, अभ्यास कार्य के प्रश्नों पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो है वो उसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि वो धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी धातु होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो पारा होता है, मरकरी जो होती है, वो इकलौती ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग पारा को टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है। तो आप लोगों को पता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो होता तो अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। तो आप लोग ग्रेफाइट को टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। तो आप लोग सोडियम को टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप लोग बेसिक ऑक्साइड यानी कि क्षारीय ऑक्साइड को टिक कर लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट से कम वाले जितने भी सोने होते हैं वो सारे के सारे अशुद्ध होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अम्लों के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पर आप सुचालक लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः किन गुणधर्मों वाले होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं गुणधर्मों में। तो यहाँ पर आप लोग अम्लीय लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम वन और कॉलम टू। और इसमें से कॉलम वन में से कॉलम टू में से चुनना है आपको कि कौन कौन से सही बताए गए हैं ऑप्शंस, और उनका आपको मिलान करना है। जैसे कि कॉलम वन में जो सोना है आपको चेक करना है कि कॉलम टू में से उसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताई गई है, कौन सा गुण बताया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जो सोना होता है उसका गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग सोने का गहने के साथ में मिलान कर देंगे। उसके बाद अगला है गंधक। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो गंधक होता है उसका औषधि बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, औषधि वगैरह के निर्माण में गंधक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग गंधक का मिलान कर देंगे औषधियों के निर्माण से। उसके बाद अगला है पारा। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो पारा होता है उसको थर्मामीटर में यूज किया जाता है, तापमापी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग पारा को तापमापी से इसका मिलान कर देंगे। अगला है ग्रेफाइट। तो आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल की नोक में पाया जाता है। पेंसिल बनाने के लिए या तो सीसा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग ग्रेफाइट का मिलान कर देंगे पेंसिल से। उसके बाद अगले प्रकार के जो प्रश्न है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न है आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये है कि जब भी कभी किसी धातु के ऊपर आघात किया जाता है किसी लोहे की हथौड़े की मदद से, तो उस पर आघात करने की वजह से वो जो धातु का मटेरियल होता है, धातु का जो पदार्थ होता है, उसका साइज, उसका आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है, उसमें वर्धन होने लगता है। और इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को, धातुओं के इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था कि मिश्र धातु वो धातु होते हैं जिनको बनाया जाता है उनमें किसी और धातु को मिक्स करके या फिर किसी और धातु को मिक्स करके। तो जब भी कभी किसी धातु में कोई दूसरा धातु मिक्स करके या फिर अधातु मिक्स करके एक नया धातु बनाया जाए और वो इस प्रकार का धातु हो जिसमें जंग ना लगती हो और एक अच्छी क्वालिटी का धातु हो, तो उस प्रकार के धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में, आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया होगा, जो नल होते हैं, पानी के नल होते हैं, बहुत चमकदार जब होते हैं तो उसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो नई नई साइकिल आती है, साइकिल की रिम आप लोगों ने देखी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगाया जाता है। और ये इस प्रकार की धातु होती है जिसमें जंग नहीं लगती, और स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है लोहे के साथ में क्रोमियम और निकल को मिलाकर के। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो पीतल बनाते हैं वो बनाते हैं तांबे में जस्ते को मिलाकर के। और इस प्रकार का जो नया धातु बन के तैयार हुआ है, पीतल जो बन के तैयार हुआ है, उसमें भी जंग नहीं लगती। और इस प्रकार के जो धातु बनाए जाते हैं जिनमें या तो कोई दूसरा धातु मिक्स किया जाता है या फिर अधातु मिक्स किया जाता है, और उसके बाद हमारे जो इच्छा के अनुसार अलग अलग गुण उनको दिए जाते हैं, इस प्रकार के जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें ही मिश्र धातु कहते हैं। और इसके उदाहरण भी अलग अलग आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, कांसा, पीतल या फिर स्टेनलेस स्टील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का गलनांक किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ पिघल जाए, वो एक द्रव्य अवस्था में आ जाए, उस तापमान को कहते हैं उस पदार्थ का गलनांक। जैसे कि अगर मान लो कोई धातु की चीज़ है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, बहुत उसको हीट कर देंगे, और हीट करने की वजह से जब वो पिघल जाएगा, वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा, तो उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर जिस पर वो धातु पिघल गया, वो उस धातु का गलनांक कहलाएगा। और इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ जो होते हैं, जिस तापमान पर वो गलने लग जाते हैं, उसी तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, वो क्यों होता है ऐसा। तो ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार का होता है कि उसमें कार्बन के अलग अलग बॉन्ड्स बने होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है, और उसके अंदर कार्बन के दूसरे कार्बनों के साथ में बॉन्ड बने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड बने होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि बॉन्ड्स जो होते हैं, बंध जो बने हुए होते हैं कार्बनों के बीच में, वो इस प्रकार से होते हैं कि उसमें कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें चलते फिरते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही विद्युत को ग्रेफाइट के अंदर कंडक्ट कराते हैं, मतलब कि जो विद्युत है उसका सुचालन ये इलेक्ट्रॉन्स ही करवाते हैं ग्रेफाइट के अंदर में, और इसी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नींबू के शरबत को लोहे के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो धातु की बनी चीज़ें होती हैं वो अम्ल के साथ में रिएक्शन करती हैं, एसिड के साथ में रिएक्शन करती हैं, और हाइड्रोजन की गैस को उत्पन्न करती हैं। और नींबू का पानी जो होता है वो प्रकृति में अम्लीय होता है, और उसको जब लोहे के बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन शुरू हो जाएगी, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, और वहाँ पर हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न होने लगेगी, जिसकी वजह से जो लोहे का पात्र होगा उसमें रिएक्शन होने की वजह से जो लोहे का पात्र होगा वो गलने लग जाएगा। तो इसीलिए लोहे के पात्र में नींबू के रस को नहीं रखा जाता है। उसके बाद अगले प्रकार के जो क्वेश्चन है वो है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो सोडियम धातु होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है या फिर जो मॉइस्चर होता है, मतलब कि जो पानी की बूंदें होती हैं, ओस वगैरह जो होती हैं, जैसे ही ये उसके संपर्क में आता है सोडियम का धातु, तो वो उसके साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की गैस। और बहुत ही जल्दी अभिक्रिया होने की वजह से इसमें आग पकड़ लेती है और एक्सीडेंट हो सकता है, और इसी वजह से सोडियम के धातु को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, मतलब कि मिट्टी के तेल में, ताकि इसका संपर्क तोड़ा जा सके वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ में, मतलब कि जो नमी जो होती है वायु में उसके साथ में इसका संपर्क तोड़ दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को विभेदित कीजिए, मतलब कि आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है जो धातु और अधातु हैं उनके, और आधार क्या चुनना है, आपको आधार चुनना है भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आप दो कॉलम बना लेना, एक साइड लिखना है धातुओं की सारे प्रॉपर्टीज जो भौतिक गुणधर्म है वो लिखने हैं, और दूसरे साइड आपको अधातुओं की प्रॉपर्टीज लिखने हैं, भौतिक गुणधर्म लिखने हैं। और सबसे पहले जैसे ही दो आप लोग कॉलम बना लेंगे तो सबसे पहला लिखना स्टेट, स्टेट मतलब भौतिक अवस्था लिखना है आपको, और आपको वहां पर लिखना है कि जो धातु होते हैं उनकी भौतिक अवस्था होती है ठोस, और जो अधातु होते हैं वो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, और जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं ज्यादातर, और पारा होता है केवल वही द्रव की अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद रंग के बारे में आप लोग लिखेंगे, अगला लिखेंगे आप लोग रंग, और उसमें आप लोग लिख देंगे कि जो मेटल होते हैं, धातु जो होते हैं, उनका रंग होता है रुपहला या फिर घूसर, और जो अधातु होते हैं उनका रंग अलग अलग हो सकता है, जैसे सल्फर का कलर होता है पीला, या फिर और भी कोई जो अधातु है उनके अलग अलग कलर्स जो आपको बताए गए हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला आप लोग लिख देंगे चमक, और इसमें आप लोग ये लिख देंगे कि जो धातु की बनी चीज़ें होती हैं वो चमकीली होती हैं, और इनमें एक अलग प्रकार का धात्विक चमक होता है, और अधातुओं में आप लोग लिख देंगे कि उसमें कोई चमक नहीं होती है, किसी भी प्रकार का उसमें चमक नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद कठोरता के बारे में आप लोग लिख देंगे कि जो धातु की बनी चीज़ें होती हैं वो कठोर होती हैं, उनको चाकू की सहायता से नहीं काटा जा सकता है, लेकिन जो अधातु की बनी चीज़ें होती हैं वो उतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं, भुरभुरी होती हैं नेचर में, या फिर नरम हो सकती है। उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं ध्वनिकता के बारे में, और आपको पता है कि ध्वनिकता जो होती है प्रॉपर्टी वो केवल और केवल धातुओं की होती है, धातु की बनी जो चीज़ें होती हैं इनको चोट करने पर इनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है और उसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, और ये केवल और केवल धातुओं में होता है, और जो अधातु की बनी चीज़ें होती हैं उन पर चोट करने पर उनमें से कोई भी अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद घनत्व के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि जो धातु होते हैं उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, और जो अधातु होते हैं उनका घनत्व बहुत कम होता है। उसके बाद अगला लिख सकते हो गलनांक, इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो धातु की बनी चीज़ें होती हैं उनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, अधातु की बनी जो चीज़ें होती हैं उनका गलनांक कम होता है। उसके बाद अगला लिख सकते हो ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता, इसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि जो धातु की बनी चीज़ें होती हैं वो ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु की बनी जो चीज़ें होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। उसके बाद लिख सकते हो अगली प्रॉपर्टी जो है आघात वर्धनीयता, और इसमें आप लिख सकते हो कि धातु की बनी चीज़ों पर जब आघात किया जाता है तो वो फैलती हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आघात वर्धनीयता, और अधातुओं में लिख सकते हो कि आघात वर्धनीयता की प्रॉपर्टी, ये जो गुण है ये अधातुओं में नहीं शो होता है, उनमें आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं, गुणधर्म जो हैं, वो आप लोग वहां पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, धातुओं के कोई चार उपयोग लिखिए। तो आप लोगों को बहुत सारे उपयोगों के बारे में मैंने यहाँ आज बताया था, जैसे कि बर्तन बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है, खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, बिजली के उपकरण बनाने के लिए जैसे कि जो बिजली के तार होते हैं, या फिर रेडियो के अंदर जो तार इस्तेमाल होते हैं, या फिर फ्रिज को बनाने के लिए, इन सभी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो धातु ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो धातु होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद घरों के छत के ऊपर एल्युमिनियम की शीट या फिर लोहे की चादर लगाने के लिए भी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं वो भी धातु की ही होती है, या फिर जो सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं वो भी धातु के ही बनाए जाते हैं। उसके बाद थर्मामीटर में धातु का ही इस्तेमाल किया जाता है, पारा जो होता है वो भी एक प्रकार का धातु होता है, और इसका थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है तापमान चेक करने के लिए। उसके बाद आगे आप लिख सकते हो कि जो सोडियम का धातु होता है उससे अलग अलग चीज़ें बना करके हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक के रूप में ये इस्तेमाल होता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा होता है, मतलब कि कपड़ा धोने का जो डिटर्जेंट होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा, और इसी प्रकार से अलग अलग जो इस्तेमाल है इनमें से कोई चार आपको इस्तेमाल लिख देने हैं उत्तर के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मकानों में बिजली की वायरिंग में तांबे के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये समझाइए। तो आप लोगों को पता है कि तांबा जो होता है वो एक प्रकार का धातु होता है, और जो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसीलिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। जो वायरिंग होती है तारों की, वो तांबे के तारों से बनाई जाती है, क्योंकि तांबा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुचालक होता है विद्युत का, और इसी वजह से घरों के जो बिजली के तार होते हैं वो तांबे से बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखिए। तो आप लोगों ने अलग अलग रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था, उसी को आप लोगों को लिखना है। दो कॉलम फिर से आप लोगों को बना देना है, धातु का अलग और अधातु का अलग, और इसमें रिएक्शंस जो है उसके आधार पे आपको गुणधर्म लिखने हैं। सबसे पहला जो है आपको लिखना है, वायु के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है। तो दोनों में वायु के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो धातु का भी ऑक्साइड बनता है, अधातु का भी ऑक्साइड होता है, लेकिन आपको आगे ये लिखना है कि जो धातुओं में ऑक्साइड बनता है वो जो होता है प्रकृति में वो क्षारीय होता है, लेकिन जो अधातुओं का ऑक्साइड बनता है वो प्रकृति में अम्लीय होता है। उसके बाद अगला आप लोग लिखेंगे कि जल के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि अधिकांश जो धातु होते हैं वो जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वो उस धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों को जब अधातुओं के बारे में लिखना है तो आपको ये लिखना है कि नॉर्मली सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो जल के साथ में या फिर वेपर के साथ में, भाप के साथ में अभिक्रिया ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसी वजह से फॉस्फोरस को जल में ही रखा जाता है। उसके बाद अगला आप लोग लिखेंगे, अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया होती है। आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो धातु होते हैं जब वो अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन की गैस उत्पन्न करते हैं, और जो अधातु होते हैं वो ज़्यादातर तनु के जो एसिड होते हैं, मतलब जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, उसके साथ में जो अधातु होते हैं रिएक्शन नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो केवल और केवल ज़्यादा क्रियाशील अम्लों के साथ में ही रिएक्शन करते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सल्फर जो होता है वो सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर का डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। और साथ में जब आप लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज आप बता रहे होंगे रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देके और उसको रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं, अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जब यहाँ पर बताएंगे कि कब रिएक्शन होती है, जब वायु के साथ में धातु रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये वाली रिएक्शन आप लिख सकते हैं जो कि पेज नंबर 22 पर है, इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है प्रकृति में क्षारीय होता है। और जब अधातुओं के बारे में लिखेंगे तो आप लोग वहाँ पर सल्फर का आपने उदाहरण दिया था, तो सल्फर का आप लिख सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है वो प्रकृति में कैसा होता है, वो होता है अम्लीय। उसके बाद जल के साथ में जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आपने सोडियम के बारे में पढ़ा था कि सोडियम रिएक्शन करता है जल के साथ में, सोडियम प्लस H2O, H2O कहते हैं जल को, और वहाँ पर बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2। ये आप लोग लिख सकते हो उदाहरण के रूप में, ये पेज नंबर 22 पर ही है ये रिएक्शंस, तो ये आप लोग वहाँ पर कॉपी कर सकते हो जब आप लोग वहाँ पर आंसर लिख रहे होगे तब। और इसी के साथ में आपका अध्याय मैंने ख़त्म करवा दिया है। आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ना है, पूरे चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर लेना है। जहाँ पर भी कहीं पर आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।